Welcome to this Monday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. And today we'll also be taking calls from you on any queries that you may have on economic, business and stock market news. But do remember that we don't address company-specific queries. You can call us on 2331-4444-2342-1050 and 2331-0464. I am Vaibhav Jyotsna Srivastav with my co-anchor Sonu Sood.
धन्यवाद वैभव. नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है, जहां हम ताजा आर्थिक खबरें आप तक लाते हैं. आज सोमवार है और हर सोमवार की तरह आज भी हम आपके प्रश्नों को सीधे कार्यक्रम में शामिल करेंगे. इस कार्यक्रम में व्यापार, अर्थव्यवस्था और शेयर बाजार से जुड़ा कोई भी प्रश्न पूछने के लिए आप हमें इन नंबरों पर फोन कर सकते हैं, 2331-4444-2342-1050 और 2331-0464. दिल्ली से बाहर के श्रोता इन नंबरों से पहले दिल्ली का एसटीडी कोड 011 भी डायल करें. लेकिन याद रखें कि हम किसी खास शेयर या खास कंपनी से जुड़े सवालों के जवाब इस कार्यक्रम में नहीं दे पाएंगे. जब आप हमें फोन कॉल करें तब अपने रेडियो सेट की आवाज धीमी रखें ताकि बेहतर क्लैरिटी के साथ हम एक दूसरे को सुन सकें. प्रश्नों के उत्तर और चर्चा के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में आमंत्रित है वरिष्ठ आर्थिक विश्लेषक शरद कोहली. नमस्कार शरद जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है.
नमस्कार सोनू, नमस्कार वैभव और सभी श्रोताओं को मेरा सादर प्रणाम.
और अब सबसे पहले हेडलाइंस के साथ हैं मेरे को एंकर वैभव जी श्रीवास्तव.
We begin with the headlines. India's retail inflation eases to 2.1% in June, this year lowest year-on-year inflation after January 2019. Wholesale inflation turns negative on fuel prices and benchmark domestic equity indices slide for fourth consecutive session. Sensex sheds nearly 250 points. Nifty settles at 25,082.
भारत की उपभोक्ता मूल्यों पर आधारित मुद्रास्फीति की दर इस वर्ष जून में कम होकर 2.1% रही, जो वार्षिक आधार पर जनवरी 2019 के बाद अब तक का न्यूनतम मुद्रास्फीति दर है. खाद्य और ईंधन के मूल्यों में गिरावट के चलते थोक मूल्यों पर आधारित मुद्रास्फीति की दर नकारात्मक दर्ज हुई और प्रमुख घरेलू बाजार सूचकांक लगातार चौथे सत्र गिरावट में रहे. सेंसेक्स लगभग 250 अंक गिरा, निफ्टी 25,082 पर हुआ बंद.
Let's begin with the headline story first. India's retail inflation measured by the Consumer Price Index CPI eased to 2.10% for the month of June, down from 2.82% in May, data released by the Ministry of Statistics and Programme Implementation show today. This is down 72 basis points in comparison to May 2025 and the lowest year-on-year inflation after January 2019. There was a significant drop of 205 basis points in food inflation in June 2025 over the same period last year. The decline in headline and food inflation is mainly on account of favorable base effect and easing of inflation. Vegetables, pulses and products, meat and fish, cereals and products, sugar and confectionery, milk and products and spices.
और बता दें कि भारत की थोक मूल्यों पर आधारित मुद्रास्फीति की दर WPI पिछले वर्ष जून की तुलना में जून 2025 में 0.13% नीचे पहुंचकर नकारात्मक दर्ज हुई. वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार ये गिरावट मुख्य रूप से खाद्य पदार्थों, खनिज तेल, मूल धातुओं के निर्माण, क्रूड पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के मूल्यों में कमी के कारण आई है. थोक मूल्यों पर आधारित मुद्रास्फीति इस वर्ष लगातार कम हुई है और मई महीने में 14 महीने के न्यूनतम स्तर 0.39% पर दर्ज हुई थी. खाद्य मुद्रास्फीति वार्षिक आधार पर 0.26% गिर गई। प्राथमिक वस्तुओं के मूल्य में 3.38% की गिरावट आई। ईंधन और बिजली क्षेत्र में भी 2.65% की गिरावट दर्ज हुई। विनिर्मित उत्पादों की बात करें तो यहां मूल्यों में 1.97% की बढ़त दर्ज हुई। हालांकि बढ़त की दर में इस महीने कमी दिखाई दी। WPI थोक मूल्यों में बदलाव को दर्शाता है। इसके विपरीत CPI उपभोक्ता स्तर के मूल्यों में उतार चढ़ाव को मापता है। और आपकी एक ब्रीफ सी टिप्पणी चाहेंगे, हमारे श्रोता वेट कर रहे हैं, इन फिगर्स से क्या लगता है आपको, इन्फ्लेशन कंट्रोल में पूरी तरह आ चुकी?
बिल्कुल, और सोनू सबसे ज्यादा जो कंट्रोल में आई है जो खाने पीने की चीजें हैं, आपके किचन का सामान है, वहां पर इन्फ्लेशन ने बहुत सुधार दिखाई दिया है। पर मैं साथ में ये भी बता दूं उसमें थोड़ा सा बेस इफेक्ट भी है, जिसको हम बेस इफेक्ट करते हैं, यानी कि कहां से ये मापा जाता है। तो बिल्कुल 2019 के बाद बिल्कुल इन्फ्लेशन इस समय लगाम में है। मुझे लगता है ये किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत अच्छी खबर है और उपभोक्ताओं के लिए खासकर ये बहुत अच्छी खबर लेकर आया है।
Absolutely, and it's a Monday. We've been joined by our first caller. We've got Ashish Pandey from Delhi. Ashish, welcome to the show. Please ask your question.
Hi, सभी को मार्केटमेंट के सभी को मेरा नमस्कार। मैं ये जानना चाहता हूँ अपने एक्सपर्ट से कि ये जो अमेरिका में ट्रंप प्रशासन जो है ये टैरिफ पे टैरिफ लगाए जा रहा है सारे देशों के प्रति, तो ये क्या इसका क्या असर होने वाला है और ये क्या सचमुच एज एन एक्सपर्ट आप बताएं कि क्या ऐसा करना सही है? अगर ये सही है तो फिर सारे ही कंट्री ऐसा करके और अपना जो है प्रॉफिट और सब कुछ बढ़ा सकते हैं, या ये वार अमेरिका को उल्टा पड़ने वाला है, आपकी राय?
देखिए आशीष, डोनाल्ड ट्रंप साहब जब इलेक्शन जीत के आए थे तो उनका एक नारा था MAGA, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। तो उसी के अंतर्गत उन्होंने ये निर्णय लिया कि हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है देशों के साथ, जब हम आयात निर्यात करते हैं बहुत ज्यादा, ये घाटा पूरा होना चाहिए, क्योंकि उनको लगता था कि अमेरिका बहुत सस्ते टैरिफ्स पर यहां पर लोगों का माल मंगा लेता है, जबकि अमेरिका का जब माल दूसरे देशों में जाता है उनको ऐसा लगता था तो वो बहुत ज्यादा टैरिफ लगता है। मेरा एक अर्थशास्त्री होने के नाते मानना यह है कि इंटरनेशनल ट्रेड और सभी श्रोताओं के लिए काम की बात है, तो मैं थोड़ा सा हमारे जो दोनों माननीय एंकर्स हैं उनकी इजाजत से इसको खोल के बता दूं, क्योंकि बहुत सारे सवाल आते हैं इससे। तो मुझे लगता है कि दो देशों के बीच में ट्रेड एक नेचुरल इवोल्यूशन है, स्वाभाविक तौर पर उभरता है। आपको कोई चीज अच्छी लगती है, आपके यहाँ सस्ती बनती है, आपके यहाँ क्लाइमेट अच्छी है, आप भेज सकते हैं, मेरे यहाँ कोई चीज अच्छी बनती है सस्ती बनती है, मेरे पास टेक्नोलॉजी है मौसम है वगैरह वगैरह। तो ये दशकों के बाद दो देशों के बीच में आपस में ट्रेड स्वाभाविक तौर से उभर कर आता है। तो मुझे लगता है उस पर हस्तक्षेप इस तरीके से करना अमेरिका को नुकसान भी पहुंचा सकता है, क्योंकि आप समझ सकते हैं जब उनके यहां महंगा सामान आएगा टैरिफ लगने के बाद तो वहां पर इन्फ्लेशन को वो बढ़ावा दे सकता है। आपने देखा होगा फेड के जो चेयरपर्सन है जेरोम पावल साहब, वो अभी ब्याज की दरें घटाने में जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं, इसी वजह से नहीं, अभी भी वहां 4% से ऊपर की बनी, इसी वजह से नहीं कर रहे, उनको लग रहा है कि अगर ये टैरिफ लगे तो शायद अमेरिका में इन्फ्लेशन फिर आ सकता है। तो देखिए क्या होता है, अभी तो हम रोज नई नई घोषणाएं सुनते हैं, नए नए देशों के नाम आते हैं, नई नई परसेंटेजेस सुनते हैं, और भारत और अमेरिका के डील भी अभी पेंडिंग है, उस पर कुछ घोषणा जल्द आ सकती है, इंटरिम डील होगी मिनी डील होगी। पर आपकी बात ठीक है, कई बार बहुत ज्यादा अगर ऐसा किया गया तो खुद को भी नुकसान पहुंचा सकता है, अब ये तो समय बताएगा। मुझे लगता है 2-4 महीने में पिक्चर बिल्कुल क्लियर होकर सामने आ जाएगी, बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि अंततः ट्रंप साहब क्या करना चाहते हैं और जो वो करना चाहते थे उसमें वो कितना सफल रहे या नहीं रहे।
अगले कॉलर है फरीदाबाद से विशाल। विशाल जी आपका स्वागत है, सवाल पूछे।
हाँ जी नमस्कार जी।
जी नमस्कार।
मैं ये पूछना चाह रहा था कि जैसे मैंने कल भी फोन किया था कि जो हमारे गोल्ड बॉन्ड हम सेकेंडरी मार्केट से खरीदते हैं जो जी, उनको में हमें जो जैसे हम पहले जब SGB का बॉन्ड आता था उसकी तरह के ही बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे वो हमारा इंटरेस्ट रेट मिलता है उसमें 2.5% का, और जो मतलब टैक्स सेविंग वाला, या फिर वो अलग होते हैं। दूसरा मेरा सवाल ये था कि जो हमारे ETF हम सिल्वर और गोल्ड के हम ट्रेड करते हैं नॉर्मली आजकल अपने प्लेटफॉर्म्स पे, वो उनके जो रूल्स होते हैं वो नॉर्मल स्टॉक्स की तरह ही होते हैं या उनसे अलग होते हैं कि उनके बाय एंड सेल पे कुछ ज्यादा चार्जेस लगते हैं या फिर उनका जो होल्डिंग पीरियड है वो लॉन्ग टर्म के लिए 1 साल से बढ़ के कुछ ज्यादा होता है? तो मुझे ये पता करना था।
विशाल देखिए, आपने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स का पूछा, अगर आप उसको सेकेंडरी मार्केट से खरीदते हैं, बिल्कुल आजकल लोग सेकेंडरी मार्केट से ही खरीद रहे हैं क्योंकि अब ये नए आने आपको पता होगा बंद हो गए, तो बिल्कुल जब आप उसको सेकेंडरी मार्केट से ले लेते हैं विशाल, तो जो लाभ एक ओरिजिनल अलॉटी को मिलते थे 8 साल बाद आपको पता होगा वो मैच्योर होते हैं, और जो 2.5% इंटरेस्ट मिलता है उस पर सालाना वो माफ भी होता है, और कैपिटल गेन भी इस पे जो लगता है, अगर आपने उसको 2 साल से ज्यादा होल्ड किया है तो कैपिटल गेन भी इसको माफ होता है। तो आप ये देखिए कि आप कितने टाइम उसको होल्ड कर रहे हैं, अगर आपका होल्डिंग पीरियड 2 साल या उससे अधिक है तो आपको इस पे लाभ मिलेगा। और ईटीएफ का आपने पूछा, बिल्कुल ईटीएफ पे क्योंकि स्टॉक मार्केट में ट्रेड किया जाता है ईटीएफ, तो इसके नियम लगभग स्टॉक्स जैसे ही हैं। और गोल्ड ईटीएफ है, आपको पता होगा अलग अलग किस्म के ईटीएफ है, लगभग इसके सेम नियम है। बहुत लंबा डिस्कशन हो जाएगा, बहुत सारे लोग क्यू में मुझे दिखाई दे रहे हैं, तो आपको आज मैंने एसजीबी का बताया, फिर ईटीएफ का और अगर आप जानना चाहेंगे विस्तार से, पर आपको मोटे तौर पर बता दिया। आयकर अधिनियम ये कहते हैं कि अगर कोई सिक्योरिटी स्टॉक मार्केट में ट्रेड की जाती है तो उसके नियम सबके लगभग एक जैसे होते हैं।
वी आर जॉइंड इन बाय एनआर प्रसाद फ्रॉम बेंगलुरु। मिस्टर प्रसाद, वेलकम टू द शो, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन।
Hi, good evening, Market Mantra. This is N.R. Prasad from Bangalore. Sharalji, there are 2 questions. One on the ITR. I have got both NTCG and the STCG in stocks. But whereas I have got a little bit of mutual fund losses, which they were not doing well. So I sold off, got the money invested in stocks. So can I adjust those losses against any of the NTCG or STCG? This is my first question. Or vice versa also. Second question is, I'm looking into two sectors. One is that storage and logistics. Second is renewable energy. Both I am just looking into in the stocks, SIPs, for the next 1 year. So how do you look at it? These are my 2 questions. Thank you,
Mr. Prasad. Your first question regarding LTCG and STCG, for the information of our listeners, LTCG means long-term capital gain, STCG is short-term capital gains. And you apparently have some mutual fund losses. Yes, you can set off. It's not called adjusted. The technical word uses set off. You can not only set off, Mr. Prasad, if there is anything left, that is if your losses are more than the gains you're offsetting, you can even carry them forward to the future years. So keep that in mind. So mutual fund, but make sure that when you're offsetting, you can offset your long term against short term against long term, but the reverse is not true. So just be careful about that. Your second question is, and you should also remember, you'll have to fill up your ITR 2, you know, if you've got these gains. Your second question is about storage and renewable energy sector. Both the sectors are very good. I am particularly bullish on renewable energy because that's the future, whether it's biogas, whether it's solar, whether it's windmills, and so on and so forth. Storage is also good, but storage
and logistics, I think.
Logistics, that's also very good because it's government's mandate now to bring down the logistic cost to international levels. Both are good, although you might see progress of storage a little slower because that involves a heavy amount of capital investment. So does renewable energy for that matter, but renewable energy, I feel, will move quicker. So please make sure when you're investing in both these sectors, please go ahead, but hold on for a longer time.
अगले कॉलर से बात करने से पहले आइए देख लेते हैं कि शेयर बाजार में कैसा आज प्रदर्शन रहा। प्रमुख घरेलू बाजार सूचकांकों में इस सप्ताह की शुरुआत नकारात्मक रुख से हुई। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में लगातार चौथे सत्र आज गिरावट दर्ज हुई। निवेशक धारणा पर अब तक के पहली तिमाही के कमजोर कंपनी परिणामों और वैश्विक व्यापार शुल्कों पर चिंताओं का प्रभाव पड़ा। बम्बई शेयर बाजार का 30 शेयरों पर आधारित सेंसेक्स 0.3% की मंदी से 247 अंकों की गिरावट दर्ज करता हुआ 82,253 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 0.27% कम होकर 68 अंकों के नुकसान से 25,082 पर बंद हुआ। विस्तारित बाजार पर नजर डालें तो यहां प्रदर्शन कहीं बेहतर था और दोनों प्रमुख सूचकांकों में बढ़त दर्ज हुई। बीएसई मिड कैप सूचकांक में 0.67% की बढ़ोतरी दर्ज हुई और स्मॉल कैप सूचकांक 0.57% की तेजी पर बंद हुआ।
Domestic benchmark indices started the week on a negative note, with both the Sensex and the Nifty continuing their downward slide for the fourth straight session today. Investor sentiment was affected by weak first quarter corporate results so far, as well as concerns over global trade tariffs. The 30-share BSE Sensex settled at 82,253. Down 247 points or 0.30%, while NSE Nifty 50 ended the day at 25,082 points, falling 68 points or 0.27%. However, the broader market indices outperformed the Sensex and Nifty. The mid-cap index rose 0.67%, while the small-cap index closed 0.57% higher.
कंपनीज के आधार पर नजर डालें तो सेंसेक्स में शामिल 30 कंपनियों में से 10 के शेयर आज बढ़त के साथ बंद हुए। सबसे अधिक बढ़ने वाली कंपनियां रहीं 2.83% बढ़त के साथ एटर्नल, दूसरे नंबर पर 1.23% तेजी के साथ टाइटन थी और सन फार्मा में 0.54% की बढ़त रही। दूसरी ओर सबसे अधिक गिरने वाली कंपनियों में एशियन पेंट्स में 1.58% गिरावट दर्ज हुई। टेक महिंद्रा का शेयर 1.55% टूट गया और बजाज फाइनेंस के शेयर में 1.54% की गिरावट दर्ज हुई।
इन सेक्टोरल इंडिसेस एट द बीएसई 15 सेक्टर्स क्लोज्ड विद गेन्स, 5 विद लॉसेस, व्हाइल द ऑटो सेक्टर क्लोज्ड ऑन अ फ्लैट नोट। रियल्टी रोज 1.38% एंड हेल्थ केयर गेन 1.15%। कन्वर्सली फोकस्ड आईटी स्लिप्ड 1.07% एंड आईटी शेड 0.99%। द ओवरऑल मार्केट ब्रेथ एट द बीएसई वाज पॉजिटिव एज shares of 2,054 companies advanced, shares of 2,137 companies declined, while shares of 149 companies remained unchanged. At the National Stock Exchange, 80 companies hit their 52-week high, while 36 hit their 52-week low. And we're joined in by Sanjeev Bhardwaj from Delhi. Sanjeev, welcome to Market Mantra. Please ask your question.
Namaskar ke saath, aap teenon ko request hai. Sharad ji ne 12 rule drive kiye hain financial freedom ke. आपके चाहने वाले इस प्लेटफॉर्म पे बहुत हैं, उनको कृपया इस पे भी किसी दिन आप ट्रांसमिट कीजिए। वन सेकंड सर, क्वेश्चन ये है कि मेरे पास टर्म इंश्योरेंस है पिछले 5-6 साल से, और उससे पहले मैं इंश्योरेंस इंडोरमेंट पॉलिसियां होल्ड करता हूँ 6, जिनका कि अगर मेच्योरिटी वैल्यू देखी जाए तो वो 1-2 साल की ही लाइफ उसमें चल पाएगी। जो टर्म इंश्योरेंस है वो तकरीबन 12 एनुअल एक्सपेंस का 12-13 साल आगे चल सकता है, वो एनुअल एक्सपेंस का 12 टाइम्स है उसमें। अब आपसे जानना ये है कि पुरानी जो है उनको खत्म कर दें अगर टर्म इंश्योरेंस है।
चलिए संजीव जी, बहुत अच्छा, आप तो बहुत बड़े इंश्योरेंस के फैन नजर आते हैं मुझे। आपने इतना अच्छा पोर्टफोलियो इंश्योरेंस का बनाया हुआ। आजकल मुझे कुछ इंश्योरेंस कंपनीज के अधिकारी बताते हैं कि उनको बड़ी मेहनत करनी पड़ती है इंश्योरेंस पॉलिसीज को बेचने के लिए, बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है, बैठ के सबको कन्विंस करते हैं, कुछ अकेले में बैठ के करते हैं, कुछ परिवार के साथ। तो देखिए संजीव जी, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, जो आपने बताया आपने, अगर आप जो आई एम श्योर जो प्रीमियम आप पे कर रहे हैं आप अफोर्ड कर सकते होंगे, पर आपको अगर वो चुभ नहीं रहा है, और आपने एक बड़ी अच्छी बात इन्होंने बताई कि मैंने इनकम का 12 गुना उसको कवर किया हुआ है, तो कल को अगर भगवान ना करे कुछ किसी वजह से इनकी आय आनी बंद हो जाती है, जब ये रिटायर हो जाते हैं या किसी भी कारण से, तो बहुत अच्छी कवरेज है। तो संजीव जी, अब जब बने हुए हैं तो बने ही रहिए। वैसे हम लोग आजकल बहुत ज्यादा ओवर इंश्योरेंस से हम थोड़ा सा बचने की राय देते हैं, पर क्योंकि आप पुराने बने हुए हैं तो मैं इसलिए उस पर कोई विशेष टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, आपको डिस्करेज भी नहीं करना चाहूंगा। तो आप बने रहे, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो इनको पूरी करिए, और आपकी अच्छी कवरेज है, आपकी इनकम का 12 गुना कल को बन जाएगा जब मैच्योर होकर मिलेगा, तो बने रहिए, और अगर चुभ नहीं रहा है तो जरूर बने रहिए जी।
और अब दिल्ली से चलते हैं महाराष्ट्र, जहां से केपी शुक्ला हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत, सवाल पूछे।
गुड इवनिंग
जी। गुड इवनिंग
कोहली जी, मैं 3-4 साल से मार्केट में हूँ
जी।
तो एफएनओ में मुझे पूछना था कि एफएनओ में जो आपका बायर और सेलर में
जी,
सेलर का लगभग 10 गुना कम लगता है, बायर का ऐसा क्यों? जैसे 10,000 अच्छा, अगर बायर एक लॉट का देता है तो सेलर उसका 1,00,000 अमाउंट एक बार में लगाना पड़ता है, ऐसा क्यों? और एल्बो ट्रेडिंग क्या है, इसके बीच में जरा बताइए।
चलिए शुक्ला साहब, आप बड़े मुझे मतलब हैरानी हो रही है कि आप एफएनओ में बने हुए हैं और आप काफी मच्योर लगते हैं उम्र से भी, और एक्सपीरियंस आई एम श्योर आपको काफी है। जो शुक्ला साहब पूछ रहे हैं वैभव, उसको मैं बताना चाहूंगा, ये ऑप्शंस का पूछ रहे हैं। तो क्या होता है, जब ऑप्शंस हम बाय करते हैं तो उसमें बहुत थोड़ा सा अमाउंट जितने की ऑप्शन होती है उसको मल्टीप्लाई करके लॉट से वो निकल आता है, पर जब ऑप्शन सेल करते हैं, शुक्ला साहब ध्यान से सुनिएगा, ऑप्शन सेलर्स को फाइनेंसर्स माना जाता है। मतलब जब ऑप्शन को सेल कर रहे हैं तो हमें, जब हमें मंदी करना होता है तो हम कॉल ऑप्शन को सेल करते हैं, हमें तेजी करनी होती है तो उल्टा होता है, हम पुट ऑप्शन को सेल करते हैं। तो क्योंकि वो फाइनेंसर्स होते हैं इसलिए उनको जितना फ्यूचर में मार्जिन होता है उतना मार्जिन उनको देना पड़ता है। बहुत शुक्ला साहब ने बहुत टेक्निकल बात पूछ ली है, मुझे ये नहीं पता कि हमारे सारे श्रोता ऑप्शंस ट्रेडिंग में इन्वॉल्व्ड हैं, उनको टेक्निकल टर्म्स मालूम है या नहीं मालूम है, पर मैं शुक्ला साहब को जो बात बहुत जोर देके बताना चाहता हूं कि सेबी का समय समय पर डेटा आता रहता है, अभी भी कुछ दिन पहले डेटा आया कि करीब करीब 91-93% लोगों ने फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में पैसा गंवाया। तो शुक्ला साहब आप बहुत वरिष्ठ आवाज से लग रहे हैं मुझे, तो मैं आपको ये हाथ जोड़ के ये प्रार्थना करना चाहूंगा कि आप बहुत ध्यान से करें उसको, आपकी मेहनत की कमाई है। बहुत खतरनाक होता है ऑप्शंस की ट्रेडिंग करना, और जनरली इसमें देखा गया, अभी एक कंपनी भी आपको याद होगा फॉरेन का एफपीआई था, उसको बैन भी किया गया मार्केट मैनिपुलेशन के उस पर आरोप लगे वगैरह वगैरह। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि आप उसको बहुत ही सोच, मैं ये नहीं कहता आपको कि आप मत करिए, तो हमें अधिकार नहीं है कहने का, मैं कह दूं शुक्ला साहब इतने वरिष्ठ हैं कि आप करना बंद कर दीजिए, पर मैं आपको सतर्क रहने की जरूर सलाह दूंगा क्योंकि इसमें कभी भी हाथ जल सकते हैं और ऐसा होता है। और अगर किसी दिन आप मुझे डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग पर बोलें तो इसी पे कार्यक्रम पूरा बन सकता है कि इसमें कैसे माइंडसेट में चलता है, और एक दिन कमाई हो जाती है, दो दिन हो जाती है, तीसरे दिन वो सारी कमाई चली जाती है, फिर हमें उसकी आदत पड़ जाती है। तो इसलिए शुक्ला साहब ध्यान से करें, आपके जो सवाल था कि क्यों डिफरेंस होता है मार्जिन में, वो मैंने आपको दे दिया। और ये भी बता दूं आपको कि सेलिंग में लॉस अनलिमिटेड होता है, पर ऑप्शन बाइंग में आपका लॉस लिमिटेड होता है, लॉट इनटू टोटल प्राइस से लिमिटेड होता है, ये आप जानते ही होंगे इस बात को। तो सतर्क रहिए, केयरफुल रहिए, और प्लीज हाथ मत जलाइएगा अपने इस ट्रेडिंग में।
एल्गो ट्रेडिंग की भी शायद,
हाँ एल्गो ट्रेडिंग इन्होंने पूछा था। एल्गो ट्रेडिंग होती है जो एक कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर के माध्यम से डाल दिया जाता है, और उसमें क्या आपको स्क्रीन पे नहीं बैठना पड़ता, वो सिस्टम अपने आप बाय और सेल निर्धारित प्राइस पे करता रहता है। अनगिनत नंबर ऑफ एल्गो बन सकते हैं, और उस सॉफ्टवेयर को डाल के आप आराम से बैठिए, वो आपको दिन के एंड में बता देगा कि मैंने इतना कमाया या इतना लॉस किया, उसमें आपको कीमत नहीं देखनी पड़ती है। पर उसमें भी मैंने देखा है कि लोग बहुत बड़ी जो प्लेयर्स हैं वो कमा रहे हैं, सोनू और वैभव, और वो नहीं कमा पा रहे हैं जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, उतना नहीं कमा पा रहे जितनी उनको उम्मीद है। तो एल्गो ट्रेडिंग एक मशीन द्वारा ट्रेडिंग है, एक सॉफ्टवेयर द्वारा ट्रेडिंग है जो अपने आप बाय और सेल करता है। आप क्योंकि इसमें इन्वॉल्व हैं तो आप उसको आसानी से समझ गए होंगे जी।
अगले कॉलर से बात करने से पहले करेंसी बाजार पर एक नजर। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज डॉलर के मुकाबले 19 पैसे कमजोर होकर 85.98 रुपये प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ। 6 अन्य प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की मजबूती मापने वाला डॉलर सूचकांक दिन के कारोबार में 97.84 पर था। और अब हमारे साथ है मुंबई से भारत आशीष, आपका बहुत बहुत स्वागत, सवाल पूछे। भारत जी आप हमें सुन पा रहे? हेलो, शायद उनसे हमारा संपर्क में कुछ बाधा है। भोपाल चलते हैं जहां शंकर जी हमारे साथ जुड़े हैं, आपका स्वागत है, सवाल पूछिए जी। शायद कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, अभी हम फिर से इनके साथ जुड़ेंगे। रुक करते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों का, एशियाई बाजार। अब एक नजर एशिया के बाजारों पर डाल लेते हैं। जापान के निकेई को छोड़कर अन्य प्रमुख एशियाई सूचकांक आज बढ़त में रहे। दक्षिण कोरिया का कॉस्पी सूचकांक 0.82% की तेजी में रहा। सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम सूचकांक 0.52% की बढ़त में रहा। चीन का शंघाई कॉम्पोजिट सूचकांक 0.27% बढ़ गया, और हांगकांग के हैंगसेंग में 0.26% की वृद्धि दर्ज हुई। हालांकि जापान का निकेई सूचकांक आज 0.28% के नुकसान में रहा। इस बीच यूरोपीय क्षेत्र में दिन के कारोबार में रुख मिला जुला था। ताजा समाचार मिलने तक लंदन का फुटसी 0.37% की बढ़त पर था, लेकिन फ्रांस का कैक 0.51% के नुकसान पर, और जर्मनी का डैक्स 0.99% की मंदी पर था।
And we've been joined by the next caller from Delhi. We've got Prabodh Malik. Prabodh ji, welcome to the show. Please ask your question.
Hello.
Ji, Prabodh ji, apna sawal puchhe hain. Swagat hai Market Punch.
I just wanted to ask just 3 questions. One is that regarding the electricity futures, which is recently introduced in MCX, and also I believe NSE from today, they wanted to work on that. And I just wanted to understand how this is transacted, because MCX is for the financials and IEX is there already parallelly for actual exchange of power. That is number one question. Second, medical insurance. You know, senior citizens are there, they are also paying 18% GST, and we are not very clear about why GST is being imposed at the premium stage, because we have not taken any services. Till the time you take the services, the GST is, and there's no mechanism for credit adjustment of the, the GST has been paid for medical premium, which is huge at this senior citizen level. And then retirement corpus, what is the good strategy for beating the inflation, making stable and tax efficient funds?
Well, Mr. Malik, your first question was about electricity futures. It is exactly the way other futures of gold, silver and the commodity exchange are traded. That is, you there is a lot size, you pay the margin, and then there is an expiry. So it is exactly traded if it is once it's listed on NSE. It is exactly the way other instruments are traded. That's your answer to your first question. Your second answer is about why GST is being charged on medical premium. You're right, there's no ITC available for end users. So I think there is a discussion going on in GST Council. Last meeting when it happened, we did hear something that maybe on insurance it may be withdrawn, but so far it is still very much there. Basically, GST is there on all services. So far, insurance medical premium is not being kept out of it. Your third question very quickly is about retirement corpus. So retirement corpus, I think, should be balanced depending on your monthly expenditure. We normally answer two questions per query. So I think the third one I'll reserve for the next time. With your kind permission, Mr. Malik.
जी. Mumbai से भारत आशीष हमारे साथ फिर जुड़ गए हैं. जल्दी से अपना सवाल पूछिए.
Hello,
भारत जी, सवाल पूछिए जल्दी.
नमस्कार शरद जी. मैं भारत से मुंबई से बोल रहा हूँ.
जी बोलिए भारत.
जी सर, मैंने एक एफडी के अगेंस्ट लोन लिया था.
जी.
तो एफडी में भरने गया कुछ 7,775 रुपीज था.
जी.
और मेरी एफडी मैच्योर्ड थी 9/12/25 को.
जी.
तो उन्होंने मैं विड्रॉल दिया भर के कि मेरे अकाउंट में डाल के बंद कीजिए और मुझे एफडी दीजिए. उन्होंने मेरी एफडी पूरी क्लोज कर दी.
अच्छा, चलिए, एफडी तो भारत जी पूरी ही क्लोज होगी, क्योंकि अगर आपने एफडी के अगेंस्ट लोन लिया हुआ है तो उस पर एफडी पे वो लोग लियन लगा देते हैं. तो जब वो लियन लगाते हैं तो इसलिए जब आप जाएंगे उसको भरने तो एफडी को वो क्लोज, आप उनसे पूछ सकते हैं उन्होंने क्यों क्लोज करी. हो सकता है आपने जो फॉर्म साइन किया उसमें कहीं आपने ये भी साइन कर दिया हो कि एफडी क्लोज कर दी. अगर आप पूरा लोन स्क्वायर अप कर रहे थे विद इंटरेस्ट तो 9/12/25 तक थी, तो अभी तो 9/12 आया नहीं है, उनको रख भी सकते थे वो, पर अवश्य कोई कम्युनिकेशन गैप रहा होगा. और अगर आप आंशिक रूप से कर रहे हैं तो वो थोड़ी कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, तो आप एक बार बैंक से पुनः चेक करिए, नहीं तो बैंकिंग ओम्बड्समैन अवेलेबल है जहां पर आप इसकी कंप्लेंट दाखिल कर सकते हैं अगर बैंक आपकी बात नहीं सुनता है.
And due to a restraint on the time left, we won't be able to take any more callers this time. But Sharad sir and all our experts will be available on Saturdays, Sundays and Mondays on the show of Market Mantra. Let's move on to the next story. Crude oil prices rose over 1% today as investors continue to keep watch for U.S. sanctions on Russia that may affect global supplies. Brent crude was trading 1.36% higher, $71.32 per barrel, while WTI crude was also up 1.49% at $69.47 per barrel when reports last came in. And talking about the gold and silver news, in the Indian bullion market, 24-carat gold was trading 0.23% higher at 98,440 rupees per 10 grams, while silver 999 fine was also trading 1.23% up at 1,14,660 rupees per kilogram a short while ago.
उधर मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अंतिम समाचार मिलने तक अगस्त में आपूर्ति वाले सोने का वायदा मूल्य 0.19% बढ़कर 98,005 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था. वहीं सितंबर में आपूर्ति वाली चांदी का वायदा मूल्य 1.33% की तेजी से 1,14,499 रुपए प्रति किलो पर चल रहा था. सो ये बहुत ही शॉकिंग राइज हो रहा है, बहुत ही मिटियोरिक राइज.
बिल्कुल, हमें धन्यवाद करना चाहिए ट्रंप साहब का, धन्यवाद करना चाहिए जियोपॉलिटिकल टेंशंस का, हालांकि धन्यवाद वहां करना नहीं बनता है,
पर हम धन्यवाद आपका करना चाहेंगे और सभी श्रोताओं का भाग लेने के लिए इस कार्यक्रम में.
एंड बिफोर वी क्लोज, अ रिमाइंडर ऑफ द हेडलाइंस. इंडियाज रिटेल इन्फ्लेशन इजेस टू 2.10% इन जून दिस ईयर, लोएस्ट ईयर ऑन ईयर इन्फ्लेशन आफ्टर जनवरी 2019. होलसेल इन्फ्लेशन टर्न्स नेगेटिव ऑन food, fuel prices and benchmark domestic equity indices slide for fourth consecutive session. Sensex sheds nearly 250 points. Nifty settles at 25,082. And that's it in this edition of Market Mantra. For now, Namaskar.
Market Patra.